जयाद्वैतचंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैतचंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैतचंद्र जय गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा। आज श्री नित्यानंद प्रभु इनका आविर्भाव दिवस है। इसी दिवस पर करीब करीब 500 साल पहले, बल्कि इससे अधिक, वो बंगाल में एक चक्र गांव में प्रकट हुए थे। नित्यानंद वो साक्षात बलराम जी हैं, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिस तरह श्री कृष्ण और बलराम हमेशा साथ में अवतीर्ण होते हैं, ठीक उसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं और साथ में ही अवतीर्ण होते हैं। परसों या कल ही वराहदेव के आविर्भाव दिवस के प्रवचन में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के विभिन्न रूप हैं, अनंत अवतार हैं, और ये सारे अवतार भौतिक जगत में समय समय पर प्रकट होते हैं विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए। और जो रूप वो ग्रहण करते हैं अवतार लेते समय, वो उस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त रूप होता है। जैसे वराहदेव को पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में गिरे हुए, जो कि गिरी हुई थी, वहां से उठाना था, इसलिए उन्होंने शूकर का रूप धारण किया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि कलयुग के लोग बहुत ही पतित हो गए हैं, बड़े पापी दुराचारी हो गए हैं, तो वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, इनका उद्धार कैसे किया जाए। उस समय उन्होंने अपने आप को प्रकट करने का निश्चय किया, लेकिन अपने भक्त के भाव और कांति से ढके हुए। उनकी परम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, तो वही भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति में प्रकट हुए। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। लेकिन उनके आने का उद्देश्य क्या था? कृष्ण प्रेम को जगह जगह बांटना। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे शर्त रखे थे, और सबसे बड़ी शर्त यह थी शरणागति। उन्होंने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरे शरण में आ जाओ। और ये शर्त कलयुग के लोगों के लिए बहुत कठिन है। अरे, भगवान के शरण जाने की बात तो दूर है, किसी के भी शरण जाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। छोटा बच्चा भी आजकल आप उसको बोलेंगे, देखो बैठो, नहीं बैठेगा। क्यों बैठूं, मुझे खेलना है। तो कलयुग के लोगों को कैसे भगवत प्रेम दिया जाए, कैसे उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाकर भगवान के धाम में ले जाया जाए, ये प्रश्न भगवान के सामने आया। तो भगवान ने सोचा कि मुझे ही अवतार लेना होगा, और मैं एक ऐसे विशेष रूप को स्वीकार करूंगा जिसमें मैं केवल कृष्ण प्रेम बांटूंगा, और इस तरह से बांटूंगा, इतना कृपालु और उदार मैं बन जाऊंगा, किसी के बुरे गुण में नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि समय उचित ठीक है या नहीं, वो व्यक्ति योग्य है पात्र है या नहीं, बिना देखे बिना सोचे समझे बिना कोई भेदभाव किए मैं कृष्ण प्रेम बांटना चाहता हूं। लेकिन कृष्ण प्रेम का भंडार जो है इतना बड़ा है कि भगवान ने सोचा, हालांकि मैं भगवान हूं, मैं हर कार्य करने के लिए संपन्न हूं, समर्थ हूं, परंतु ये कार्य बड़ा कठिन है, क्योंकि भंडार इतना बड़ा है और मैं अकेला हूं, मैं अकेला कितना बांट सकता हूं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो शुद्ध भक्त है, मेरे पार्षद है मेरे धाम में, उनको भी मेरे साथ में आना होगा, साथ साथ वो भी इस खजाने को लूटेंगे और फिर जगह जगह बांटेंगे। तो उनके धाम से कई भक्त उनके साथ लीला में प्रकट हुए, और उनके सहायकों में से प्रमुख रहे बलराम जी, जो कि वृंदावन में उनके बड़े भाई हैं, दाऊ जी, और यहां पर चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार न होते हुए स्वयं कृष्ण हैं, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अंश अवतार न होते हुए स्वयं बलराम हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोरुदो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गौर और निताय, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये चांद और सूरज के समान हैं, जो कि गौर देश के ऊपर जिनका उदय हुआ है और कृष्ण भक्ति बांटने के लिए वो पधारे हैं, साथ में आते हैं। इस दुनिया में जो भी अशुभ है उसको शुभ करने के लिए, जो भी लोग दुष्ट हैं उनको साधु बनाने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए, तो ये उनका उद्देश्य था, उनका आंदोलन था। और इस हेतु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए गौड़ देश में। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु आकर क्या कर रहे थे यहां पर। सबसे पहली घोषणा करते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाए, बड़े सुख का गीत मैं गा रहा हूं, सुनिए सुनिए। और वो क्या कहते हैं कि एक बाजार खुला हुआ है, सेल, जैसे अक्सर हम देखते हैं शहर में महासेल लगा हुआ होता है, 50% डिस्काउंट, आपको कम कीमत में ये सारी चीजें मिलेगी, नया माल लेकिन 50% डिस्काउंट, कम कीमत में आपको मिलेगा, खुशखबरी खुशखबरी विज्ञापन होते हैं, है ना? या आप विज्ञापन टीवी में भी देखते हैं या अखबारों में जगह जगह, तो 50% कोई टीवी मिक्सर खरीदने के लिए 50% कम कीमत हो तो एक खुशखबरी हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा सेल है, ऐसा महासेल हो रहा है यहां, जिसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इसकी तुलना किसी अन्य बाजार से नहीं की जा सकती है। ऐसी चीज यहां नित्यानंद प्रभु बेचने जा रहे हैं जो किसी किराने की दुकान में, शॉपिंग सेंटर में नहीं मिल सकता, भारत में भी नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में भी नहीं। और वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाए, बड़ो सुखेर खबर गाए, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले छे घोड़ा निताय। सुरभि कुंज मतलब नवद्वीप, नवद्वीप का एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप में, सुरभि कुंज, यहां पे नित्यानंद प्रभु एक बाजार खोल के बैठे हैं। और उस बाजार में क्या बेच रहे हैं? बड़ा मजार कोथाता है, बड़े मजे की बात है भाई साहब, सब सुन लिए सुनिए। जैसे पहले के जमाने में जब राजा कोई घोषणा करना चाहते थे तो एक आदमी जाता था, कोई ढोलक पीटता था, सुनो 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 बड़े खुशखबरी है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जगह जगह जाके घोषणा कर रहे हैं, बड़े मजे की बात है भैया, सुनो सुनो। क्या मजे की बात है? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे ते बिकाए। इस बाजार में क्या बिक रहा है? इस बाजार में भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध नाम बिक रहा है। शुद्ध नाम, शुद्ध नाम क्या है और अशुद्ध नाम क्या है? जो नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है उसको शुद्ध नाम कहते हैं। जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं बड़े प्रेम से, केवल भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए, और हमारे पुकार में कोई अन्य विचार या हेतु नहीं होता है, केवल प्रेम होता है, तो उसे शुद्ध नाम कहते हैं। लेकिन अगर हमारी पुकार में कोई मिलावट है तो फिर वो शुद्ध नाम नहीं, अशुद्ध नाम है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमें भगवान का नाम इस तरह से लेना चाहिए जैसे छोटा बच्चा अपने मां को पुकारता है। जब बच्चा कोई तकलीफ में आ जाता है तो क्या करता है, किस तरह से रोता है मां के लिए, ठीक उसी तरह से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि एक छोटा बच्चा था, वो खटिया पे सो रहा था, अचानक नींद में लौटकर वो जमीन पर गिर गया, धड़ाम से आवाज आ गया, और आवाज सुनकर मां जो कि रसोई घर में थी भागकर आई, परेशान हुई, अरे क्या हो गया, मेरा बच्चा गिर गया जमीन पे। और बच्चा रोने लगा, लेकिन तुरंत मां ने गोदी में ले लिया और उसे एक मिठाई दे दी, रसगुल्ला। तो बच्चे ने मां का प्यार मिला, उसको रसगुल्ला भी मिल गया बोनस, तो बड़ा खुश हो गया। लेकिन बच्चे की बुद्धि भी बड़ी तेज होती है। देखिए थोड़ी देर बाद बच्चा सोचने लगा, अच्छा अगर मैं गिरा पलंग से तो मुझे एक रसगुल्ला मिला, तो ये तरीका है रसगुल्ला प्राप्त करने का। तो अगले दिन भी वो जानबूझ के गिरा, नाटक किया, धड़ाम से आवाज आया, मां आई नहीं, बड़े जोर से रोने लगा, अरे क्रोधित हो गया, मां आई नहीं, क्या बात है, जोर जोर से, फिर भी मां आई नहीं। जब ज्यादा चिल्लाने लगा तो थोड़ा गुस्सा होकर मां आई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, अरे प्यारे प्यारी प्यारी बातें करने के बजाय हमें मां भी डांट रही है, क्या बात है। तो उसने कहा, अरे मां कल जब मैं गिरा था तो तुम जल्दी से आई और मुझे संदेश तुमने दिया, रसगुल्ला दिया, और आज भी मैं गिरा लेकिन आज मैं डांट मिल रहा, मुझे डांट मिल रहा है। तो मां ने जवाब दिया, कल जब तुम गिरे थे और रोए थे तो तुम मेरे लिए रो रहे थे, लेकिन आज जब रोए तो रसगुल्ले के लिए रो रहे थे, इसलिए मैं नहीं आई। तो इसी तरह से शुद्ध नाम मतलब क्या, जब हम केवल कृष्ण को पुकारते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण के को पुकारते पुकारते मन में हमारे रसगुल्ले संदेश सब रहेंगे कि हे प्रभु हम आपका नाम लेंगे लेकिन हमारी ये इच्छा भी पूर्ण कीजिए, वो इच्छा भी पूर्ण कीजिए। बाजार में जैसे जाते हैं शॉपिंग लिस्ट लेकर, वो सारा लिस्ट का लिस्ट हम भगवान के सामने रख देते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है आराम से आऊंगा मैं, कोई जल्दी नहीं है। भगवान का कोई कम काम थोड़ी है, भगवान के पास बहुत काम है करने के लिए। अपने धाम में गायों को चराते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, अपने माता नंद यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रसन्न करते हैं, बहुत कुछ करना है उनको वहां। अगर उनको वहां से यहां बुलाना है तो ऐसे पुकार होना चाहिए कि भगवान वो सब छोड़कर यहां चले आए। इसलिए यहां इस बाजार में अशुद्ध नाम नहीं, शुद्ध नाम बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बड़ो मजार कथाता है, बड़े मजे की बात है भैया, आओ आओ। जत भक्त वृंदवासी अधिकारी देखे नाम, बेचे दारो काशी। जब हम किसी बाजार में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, किसी सेल में जाते हैं, तो तरह तरह के वस्तुएं वहां मिलते हैं। अब समझ लीजिए, किसी को टीवी खरीदना है, खरीदिए मत, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। अगर किसी को टीवी खरीदना है, एक टीवी शायद होगा 1,000 रुपए का, दूसरा होगा 5,000 का, दूसरा तीसरा होगा 10,000 का, 20,000 का, जिसके अलग अलग गुण हैं। जिसकी जैसी जेब है वैसे वो टीवी खरीदेगा, जिसके पास कम पैसे हैं वो छोटा सा टीवी खरीदेगा, सस्ता वाला, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा टीवी खरीदेगा। कहने का मतलब है कि अधिकार जिसका जैसे है वो वैसे माल लेगा। ठीक उसी तरह से शुद्ध नाम, इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें अधिकार चाहिए। किसी भी चीज प्राप्त करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। तो ये अधिकार क्या है? हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है भक्ति में। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे भगवान का नाम ले सकता है। ठीक है, अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ा मिलावट वाला नाम ले लीजिए। आपका आपकी श्रद्धा पूर्ण है, शुद्ध नाम ले लीजिए। इस तरह से अधिकार ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यदि नाम किन्बे भाई अमार संगे चलो महाजनर कछे काछे जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे भाई साहब, अगर आप नाम खरीदना चाहते हैं तो आइए आइए मेरे साथ, महाजन के पास जाते हैं। उस महाजन का नाम क्या है? नित्यानंद प्रभु। चलिए उनके पास चलिए, उन्होंने बाजार खोला हुआ है, महासेल है, चलो चलो जल्दी मेरे साथ में। तुम्हें किन्बे कृष्ण नाम दस्तुरी लोलबो आमी पूर्ण होबे काम। और देखो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं लेकिन मेरा भी स्वार्थ इसमें है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम भगवान का नाम खरीदोगे, मैं दस्तूरी ले लूंगा, कमीशन मेरा ले लूंगा। वास्तव में यह सही है, जितना हम हरि नाम दूसरों को बांटते हैं उतना हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ता है। यहां पे कंजूसे का फॉर्मूला नहीं चलता है। भगवत भक्ति में जो धन हमें मिलता है, जितना हम बांटेंगे उतना हमें मिलेगा। जब भगवान देखते हैं कि कोई सीमा न रखते हुए केवल हम भगवान के नाम को बांटने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमें भी छप्पर फाड़ के सब कुछ दे देते हैं। हिचकिचाते नहीं है भगवान। अगर हम प्रचार के कार्य में, इस हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में हिचकिचाएंगे तो भगवान भी हिचकिचाएंगे, देंगे नहीं। तो हृदय खोल के हमें यह संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। हिचकिचाना नहीं है, सोचना नहीं है, अरे क्या होगा, ज्यादा करेंगे तो तकलीफ होगी, सुना है कि कृष्ण भगवान सब हरण कर लेते हैं, शिव जी सब दे देते हैं, ऐसी सब धारणाएं होती हैं लोगों की। लेकिन भगवान ने तो गारंटी दे दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, भूल भूल जाओ तुम्हारे हिचकिचाहट को, संकोच नहीं करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं मां शुचः। इस तरह से यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं कमीशन ले लूंगा, तुम्हें भगवान का नाम देने के लिए श्रेय मुझे जाएगा, मेरा प्रेम, मेरा भगवत प्रेम भी बढ़ जाएगा, हरि नाम में रुचि मेरे लिए भी, मेरे मन में भी बढ़ जाएगी। इसलिए आजकल कलयुग में किसी एकांत स्थान में जाकर भजन करना यह उचित नहीं है, बल्कि संभव नहीं है। अकेले में कलयुग में धर्म का पालन नहीं किया जा सकता, कलयुग में भक्तों के संग में ही धर्म का पालन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना, मतलब कीर्तन, कीर्ति, यश का गान करना, गुणगान करना। लेकिन किस तरह का कीर्तन? संकीर्तन, सम्यक कीर्तन। सम्यक मतलब परिपूर्ण, परफेक्ट कीर्तन। क्यों परफेक्ट, सम्यक, परिपूर्ण होता है ये? क्योंकि भक्तों के संग में किया जाता है। इसलिए ये अनिवार्य है कि अगर कोई भगवत भक्ति के मार्ग में प्रगति करना चाहता है, उसे बार बार रोजाना भक्तों के संग में आना चाहिए, और खास करके जब ऐसे उत्सव होते हैं तो आना ही चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि माधव तिथि जब ऐसे उत्सवों का समय होता है तो यह समय भक्ति की जननी है, यह उत्सव भक्ति की माता है, इसलिए हम ऐसे उत्सवों में भाग लेकर भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए हमें उत्साह से भगवान के नाम को स्वीकारना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए और दूसरों को बांटना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसे भी आप देखो कृष्ण का उपदेश दे दो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करेगा या ज्यादा से ज्यादा हमारा मजाक उड़ाएगा, बस इतना ही तो है। लेकिन अगर उसने स्वीकार किया तो देखिए उसका जीवन और कितने और लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, और साथ साथ हमें भी कमीशन मिल जाएगा भगवत प्रेम का। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दस्तूरी लोई बो आमी, मैं भी दस्तूरी ले लूंगा। बड़ो दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लोए देन परम आनंद। ये जो दुकानदार है ना, ये इनका नाम है नित्यानंद प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। बड़े दयालु है, परम दयालु है, केवल आपके श्रद्धा के मूल्य से आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। इसमें एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, जितनी आपकी श्रद्धा उतना माल ले जाइए। अगर ज्यादा श्रद्धा है आपको ज्यादा नाम मिलेगा, तो यह मूल्य केवल श्रद्धा है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, रूप गोस्वामी बताते हैं ये लौल्यम, ये श्रद्धा, ये लोभ भगवान के लिए ये एकमात्र कीमत है जिससे हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति भविता भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति का रस अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, रूप गोस्वामी कहते हैं जहां भी उपलब्ध है किसी भी दुकान में जल्दी से जाके खरीद लो। लेकिन खरीदने का की कीमत क्या है, लौल्यम, लालच, लोभ, श्रद्धा। तो जितना ज्यादा हरि नाम के लिए हम लोभी हो जाएंगे उतना हमें माल मिलेगा। एक बार देख ले चखे जाल, गौर बोले निताई दैन सकल संबल। अगर कोई व्यक्ति गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है और लेते लेते भाव विभोर होकर उसके आंखों से एक बार भी नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि वो आंसू आ रहे हैं, तो सारे धन, आध्यात्मिक धन उस व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। शुद्ध कृष्ण शिक्षा देते हैं, कृष्ण नाम देते हैं, ये नहीं देखते हैं आपकी जाति कौन सी है, कौन से समाज के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से देश के हैं, आप अमीर है या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित, मोटे हैं या पतले, काले हैं या गोरे, कुछ नहीं देखते भगवान। नित्यानंद प्रभु बिना कोई भेदभाव किए देते हैं कृष्ण प्रेम। अमन छाड़े माया जाल, गृहे थाको वने थाको न थाके जंजाल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे भाई साहब, अगर ये माल आप खरीदोगे ना जो नित्यानंद प्रभु बेच रहे हैं, तो आप माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। आप घर में रहने वाले गृहस्थ हो या आप जंगल में रहने वाले कोई सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस माया जाल से मुक्त हो पाओगे केवल कृष्ण नाम को स्वीकार करके। आ नहीं को कलीर भय, आ चांडाले देन नाम निताय दयामय। अब और कलियुग का भय नहीं, कलियुग का भय नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कलियुग बड़ा भयंकर युग है, इस युग में कितने सारे दोष हैं, दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, यहां पर एक अच्छी बात नजर नहीं आती है। अब अखबार खोल के देखिए, आपको याद आता है वो दिन जब आपने कोई अच्छी खबर पढ़ी हो अखबार में? ये कलयुग है, क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम कलयुग से। इस कलयुग की दशा तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, जहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यहां पर सभी लोग मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। उपद्रुताः मतलब हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा दुर्भाग्यशाली रहते हैं, आलसी रहते हैं और गलत दिशा में जाते हैं, हमेशा गलत संग में रहते हैं, गलत दिशा में जाते हैं। यह कलयुग की दशा है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। फिर अंततः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे परीक्षित महाराज, हाँ ये कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है और वो है कृष्ण का कीर्तन, जिसको स्वीकार करने से व्यक्ति इस भौतिक आसक्ति से, इस कलयुग के भयानक प्रभाव से मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम में लौटकर जा सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आर नहीं को कलीर भय, अभी कली का कलयुग का भय नहीं है। जैसे साधारण भाषा में कहते हैं, अभी आप कलयुग में बिंदास रह सकते हैं, कोई डर नहीं, हरि नाम लेंगे तो कली का कोई प्रभाव आपको छू तक नहीं सकता है। आ चांद डाले दैन नाम निताय दया मोहे, नित्यानंद प्रभु चांडालों को भी ये मुफ्त में नाम देते हैं। चांडाल मतलब बहुत ही नीच व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल कहते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार जो लोग मांसाहार करते हैं उनको म्लेच्छ कहते हैं, यवन, बहुत नीच माना जाता है उनको। और इससे भी नीच वो लोग हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं, मतलब वास्तव में जो बिल्कुल असभ्य हैं। तो ऐसे लोगों को भी नित्यानंद प्रभु भगवान का नाम बांटते हैं, इतने दयालु हैं नित्यानंद प्रभु। भक्ति विनोद डाकी कोय निताय चरण बिना आर नहीं आश्रय। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के सिवाय मेरे और कोई आश्रय नहीं है। तो आप भी इन चरण कमलों को स्वीकार कीजिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें बोल रहे हैं। डाकी कोय जोर जोर से बोल रहे हैं कि भाई साहब, प्रभु जी, माता जी, आप भी लीजिए भगवान नित्यानंद प्रभु का आश्रय। तो ये है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सहायक हैं, चीफ असिस्टेंट हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में। और जब भी वो हरिनाम संकीर्तन बांटने जाते थे, क्योंकि वो अवधूत थे तो बड़े विचित्र तरह के पोशाक इत्यादि पहनते थे, सन्यासी लेकिन अवधूत। अवधूत मतलब जो सोच विचार नहीं करता कि समाज में लोगों के सामने मुझे कैसे पेश आना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, मेरा रहन सहन हालचाल कैसे होना चाहिए। वो अंदर ही अंदर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, इसलिए बाहर से संपर्क बिल्कुल नहीं रहता है। तो नित्यानंद प्रभु भी इसी तरह से व्यवहार किया करते थे, इसलिए बहुत सारे लोग उनको गलत समझते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार चेतावनी देते थे अपने भक्तों को, कभी भी निताय को, नित्यानंद प्रभु को गलत नहीं समझना। एक बार ऐसे हुआ कि एक ब्राह्मण जो कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन के सहपाठी थे और जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए एक दिन और कहने लगे कि महाप्रभु जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। ये जो नित्यानंद प्रभु है ना, इनके बारे में हमारे मन में थोड़ा संशय है। संशय ये है कि कहलाते तो हैं सन्यासी, सन्यासी को गहरे वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन ये तो रंग बिरंगी वस्त्र पहनते हैं, सफेद, नीला, पीला, अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। और सन्यासी को वैसे बहुत सरल रहना चाहिए, लेकिन ये निताय गोसाई जो है पान चबाते हैं जिसमें कर्पूर वगैरह है, और फिर उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया हुआ रहता है, बताया जाता है कि सन्यासी को कोई सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सन्यासी बड़े विचित्र हैं, नाना प्रकार के आभूषण पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर, सोने के, हीरे मोतियों का, कानों में कुंडल अलग अलग रत्नों के, और बड़े रेशम के कपड़े, मुलायम मुलायम कपड़े सब पहनते हैं। तो ये कैसे सन्यासी हम समझ में नहीं आता है। और कभी कभी इधर उधर जाते हैं, कभी इस दुकान में जाते हैं, कभी शराब के अड्डे में घुस जाते हैं, अरे पता नहीं चलता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, कहा कि देखो, जब कोई महान व्यक्ति होता है तो उसमें कभी दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति जो कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, सबसे ऊंचे स्तर में स्थित होते हैं, तो उनके ऊपर पाप और पुण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पाप और पुण्य तो इस संसार के अच्छे बुरे से संबंधित है, और ये सब भौतिक है, अच्छा क्या और बुरा क्या। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, भक्ति मार्ग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके होते हैं, उनके लिए इस संसार का कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है बुरा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अवधूत हैं, इसलिए उनको गलत नहीं समझना। जिस तरह से अगर एक अग्नि में आप नाना प्रकार की गंदी चीजें डालते जाओ तो अग्नि उन गंदी चीजों को जला देगी, लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होगी। यह है अग्नि का स्वरूप, अग्नि की शक्ति। तो ठीक उसी तरह से ऐसे कई महाजन होते हैं, महाशक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो कभी एकाध बार ऐसे वैसे कुछ कार्य कर भी बैठते हैं, लेकिन उनमें वो शक्ति होती है जिससे कि वो इन चीजों को, इन तथाकथित बुरे चीजों को जला सकते हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत से शिवजी का उदाहरण दिया कि देखो, जिस तरह से शिवजी ने सारे विष के सागर का पान किया और उनको कुछ नहीं हुआ, उनके कंठ में उन्होंने इस सारे विष के सागर को धारण कर लिया, और इसलिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। लेकिन अगर कोई साधारण आदमी शिवजी की नकल करने जाए और सागर तो क्या, एक बूंद विष भी पी ले, उसके लिए मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए ऐसे महाजनों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और साधारण दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। एक अन्य जगह पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि जो महान वैष्णव होते हैं उनके कार्यकलापों को समझना कई बार काफी मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि देखो हे ब्राह्मण, अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों के ऊपर हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो उसकी बहुत बुरी दशा होती है, उसको बहुत दुखी होना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक श्रीमद् भागवत से कथा सुनाना चाहता हूं। हे ब्राह्मण, जरा ध्यान से सुनो। तुम जानते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो अपनी माता देवकी और वसुदेव भी उनके साथ में थे। एक बार माता देवकी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास आई और कहने लगी कि अरे कृष्ण, देखो बहुत साल बीत गए, मेरे भाई कंस ने मेरे 6 बच्चों की हत्या कर दी और तब से मैं बड़ी पीड़ित हूं। मैंने सुना कि कई साल पहले जब तुम गुरुकुल में गए थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो तुमने जब गुरु दक्षिणा देना चाहा तो सांदीपनि मुनि ने तुमसे ये निवेदन किया कि उनके मृत्यु को प्राप्त हुए पुत्र को तुम लौटा दो, और तुम सीधे चले गए थे यमराज के पास, और यमराज से उनके बेटे को वापस लाए थे तुम, और अपने गुरु को लौटा दिया था, और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया था। तो मैं भी चाहती हूं कि ये मेरे 6 बच्चे मेरे पास वापस आए, कम से कम एक बार मैं उनको देखूं, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अब ये कार्य तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य है माता, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण सीधे चले गए द्वारका से सुतल लोक में, जो कि पृथ्वी लोक से नीचे है, जहां बलि महाराज राज करते हैं। और जैसे ही कृष्ण भगवान का शंख सुना तो बलि महाराज बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए। बड़े हर्षित हुए कि भगवान स्वतः वहां पधारे हैं। बड़े धूमधाम से भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का स्वागत किया। भगवान के चरणों को उन्होंने उनका अभिषेक किया, उस जल का पान किया, फिर सर पे छड़क दिया और फिर कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बलि महाराज की सुंदर स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और फिर वो कहने लगे कि हे बलि महाराज, मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि बहुत साल पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी के एक प्रजापति पुत्र थे जिनका नाम था मरीचि। मरीचि के भी कई पुत्र थे, 6। और एक बार ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान की योजना से थोड़े मोहित हो गए और अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। इसको देखकर ये जो 6 मरीचि के पुत्र थे जोर से हंसने लगे, और जैसे ही वो हंसे तो उनके ऊपर ये शाप पड़ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो परम वैष्णव है, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा एक असुर कुल में। और वो आए हिरण्यकश्यप के कुल में, उनको जन्म लेना पड़ा। और फिर उस समय जब उनकी हत्या हुई तो दोबारा उनको जन्म लेना पड़ा। वो मेरे छोटे भाई के रूप में मेरी माँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और उन्हीं के मामा कंस ने उनका बुरी तरह से वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और अब ये 6 तुम्हारे पास हैं हे बलि महाराज। देखो कि जब वैष्णव के प्रति हम इस तरह से मजाक उड़ाते हैं या हम ऐसे उनकी निंदा करते हैं तो क्या परिणाम होता है, कितना दुख भुगतना पड़ता है। देखो इन प्रजापति मरीचि के 6 पुत्रों को कितना दुख हुआ। इसलिए जो व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करता है, मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा असली भक्त है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति केवल मेरी उपासना करता है लेकिन मेरी भक्तों की परवाह नहीं करता, वो केवल एक घमंडी व्यक्ति है। तो हे बलि महाराज, जान लो कि आदर्श भक्ति ये है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करें। इस तरह से भगवान कृष्ण ने बलि महाराज को उपदेश दिया। बलि महाराज ने हाथ जोड़कर इस उपदेश को ग्रहण किया बड़े कृतज्ञता से, प्रेम से। और फिर भगवान ने कहा कि ये 6 जीव आपके राज्य में हैं, कृपया उन्हें लौटा दीजिए। तो बलि महाराज ने तुरंत उन 6 बच्चों, इन 6 व्यक्तियों को सामने हाजिर किया। भगवान ने अपने योग शक्ति से उनको फिर से 6 छोटे बच्चे बना दिए। भगवान कृष्ण ने बलि महाराज से कहा कि जब ये देवकी माता का स्तनपान करेंगे तब उनके अपराध से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं मथुरा में कंस के कारागार में था मेरी माता देवकी और वसुदेव के साथ, जन्म के तुरंत बाद मेरे पिता वसुदेव ने मुझे गोकुल ले जाने के कई क्षण पहले माता देवकी ने मुझे स्तनपान कराया था, इसलिए मेरी माता देवकी का दूध जो है वो अमृत हो गया, किसी को भी मुक्त करने के लिए योग्य है वो। इसलिए जब ये छोटे बच्चे मेरे माता देवकी का स्तनपान करेंगे तो ब्रह्मा जी के प्रति जो उन्होंने अपराध किया था उससे मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उन 6 बच्चों को ले गए। माता देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, उन छोटे बच्चों को उन्होंने स्तनपान कराया और तुरंत अपने पाप से वो मुक्त हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन 6 बच्चों को कहा कि देखो हे देवतागण, आप तो बड़े ऋषि हैं, बड़े ब्राह्मण हैं, जो कार्य आपने किया था कई साल पहले वैसा कार्य कभी दोहराना नहीं, कभी और नहीं करना, देखो उसका नतीजा क्या हुआ, कितने लाखों लाखों साल तुम्हें दुख भुगतना पड़ा, किस भयानक दृष्टि से तुम्हारी हत्या हुई दोनों जन्मों में। तो अब वापस जाओ अपनी जगह, तुम इस अपराध से अब मुक्त हो गए हो, और केवल मेरी भक्ति करते रहना और अंत में मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, चले जाओ। इसके साथ वो छह बच्चे, उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया और अपने लोक में वापस चले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा कि देखो, इसलिए मैं कहता हूं हे ब्राह्मण कि नित्यानंद प्रभु को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझो। मैं ये आश्वासन तुम्हें दिला सकता हूं हे ब्राह्मण कि अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में शराब का मटका हो, अगर वो किसी मुसलमान लड़की से भी शादी कर ले, फिर भी वो ब्रह्मा जी के लिए पूजनीय है। ब्रह्मा जी स्वतः उनके चरणों में आके प्रणाम करेंगे, ये है मेरे नित्यानंद प्रभु। बल्कि जो व्यक्ति मुझमें श्रद्धा रखता है लेकिन नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा नहीं रखता, वो भक्ति मार्ग से गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में श्रद्धा रखता है उसे मेरी कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। तो इतने विस्तार से चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को समझाया, वो ब्राह्मण हृदय से बड़े खुश हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, अब मेरे मन में जो भी संशय थे वो अब सब खत्म हो गए, अब मैं मेरा दिमाग मेरा होश ठिकाने आ गए, अब वापस जाकर मैं जगह जगह घोषणा करूंगा कि नित्यानंद प्रभु कितने महान हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको आदेश दिया कि हाँ, नवद्वीप में जाके सबसे कहो नित्यानंद प्रभु के गुणों का गान करो। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा रखने से अवश्य हमें चैतन्य महाप्रभु की श्रद्धा प्राप्त होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से हमें राधा कृष्ण का आश्रय आसानी से मिल सकता है। इस कलयुग में जिन बुद्धिमान लोगों को, भाग्यशाली लोगों को राधा कृष्ण के शरण प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है हृदय में, उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना आवश्यक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, जब तक नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त नहीं करोगे तब तक मेरे पास नहीं आना। इसलिए दोनों गौर निताय दोनों चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु हैं नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया 500 साल पहले, लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु को निमित्त बनाया, उनके माध्यम से उन्होंने ये बड़ा कार्य संपन्न किया। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि चोर डाकुओं को, तरह तरह के पतित जीवों को वो कृष्ण प्रेम दिया करते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु नवद्वीप गए, चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता के पास गए। शची माता नित्यानंद प्रभु को अपना पुत्र समझती थी और उन्होंने कहा कि अरे नित्यानंद, तुम अगर यहां नवद्वीप में रहोगे तो समय समय पर मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगी, तुम्हें देख पाऊंगी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगा और फिर अपने भक्तों के साथ में नगर संकीर्तन करते, दिन भर यही उनका काम हुआ करता था। कई बार लोगों को आश्चर्य लगता है कि आजकल लोग केवल यही काम करते हैं। जब हम ट्रेन में कभी कभी जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि आप इस्कॉन में हैं, हाँ, तो आप कोई काम वाम नहीं करते? काम करते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं, मतलब कोई बिजनेस व्यापार कोई नौकरी शौकरी नहीं करते, केवल यही करते हैं, हरिनाम करते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि हरिनाम लेना मतलब ये कोई ऐसी बात है कि बस अगर टाइम मिले, अगर समय मिल जाए गलती से तो चलो कुछ हरिनाम लेंगे। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है लोग नहीं जानते हैं। फुल टाइम 24 घंटे का कार्य है ये। तो नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ दिन भर नवद्वीप और अन्य शहरों के गली गली में घूम घूम के हरिनाम संकीर्तन करते थे। और कैसे कपड़े पहनते थे? अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों के पगड़ी, रेशम के, उस पर तरह तरह के फूल, सुंदर सुंदर फूल, फिर नाना प्रकार के सुंदर हार पहनते थे। फूलों के कितने सारे हार हुआ करते थे, साथ साथ हीरे मोती रत्नों के आभूषण। और इस तरह से एक बार जब वो नवद्वीप में आए थे तो उनके एक भक्त हिरण्य पंडित के घर में रहने लगे, क्योंकि हिरण्य पंडित का घर जो है वो शहर से थोड़ा बाहर था, एकांत स्थान था, शांत था वो स्थान। तो एक बार जब वो नगर संकीर्तन में बाहर आए तो नवद्वीप में रहने वाला एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो क्या, केवल नाम से ब्राह्मण था, लेकिन कार्य से उस सारे इलाके का, बल्कि सारे प्रांत का सबसे बड़ा डाकू था, भयानक आदमी था, और सारे डाकुओं का, चोरों का वो नेता था, सेनापति, कमांडर इन चीफ। और उसने नित्यानंद प्रभु के शरीर के ऊपर जो आभूषण थे उनको देखा था, तो जानबूझकर वो भी संकीर्तन पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन भगवान का नाम लेना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, थोड़े बहुत नाम तो चले गए ना कान के अंदर। फिर उसने योजना बनाई, अपने मित्रों को बुलाया, सारे डाकुओं को बुलाया कि देखो चंडी देवी हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रही हैं, देखो ये नित्यानंद गोसाई हैं, लोग इनको गोसाई गोसाई कहते हैं, लेकिन कैसा गोसाई पता नहीं, इतने सारे आभूषण हैं उसके शरीर पर, चलो अच्छा आदमी मिला है चोरी करने के लिए। और वो भी रह रहे हैं हिरण्य पंडित के घर में, उनका घर तो शहर के बाहर है, तो चलो हम आज रात को वहां जाते हैं और डाका डालते हैं और उनके शरीर पे जो भी है वो हम चोरी कर लेते हैं। तो आज रात को आ जाना इस स्थान पे, अपने अपने तलवार वगैरह सब लेकर हाजिर हो जाओ। तो बड़े आतुरता से सारे डाकू हाजिर हो गए वहां पर, बड़े भयानक थे, एक से एक बढ़कर डाकू, किसी के पास तलवार, किसी के पास पे और कोई अस्त्र शस्त्र। फिर वो देखने लगे और उस डाकुओं के नेता ने एक आदमी को आगे भेजा, देखो तो सही कि वहां पर क्या कर रहे हैं ये निताई गोसाई। तो उन्होंने जाके वापस रिपोर्ट लाया कि नित्यानंद प्रभु वो तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो भक्त हैं वो तो धुआंधार कीर्तन कर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं आंखों से, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई गिरे पड़े हैं, किसी का शरीर कांप रहा है, किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये सारे घर में यही चल रहा है। तो उस डाकुओं के नेता ने कहा ठीक है, शायद समय ठीक नहीं है, तो सब कुछ शांत होने दो घर के अंदर, जब ये लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे, जब सो जाएंगे तभी हम लोग डाका डालेंगे, चलो हम लोग बैठ के आराम करते हैं, देखो कितने सुंदर रात है, चलो बैठते यहां पर। तो सब लोग बैठ गए, बैठते बैठते बातचीत करने लगे। एक डाकू कहने लगा उनके कानों को जो सोने के कुंडल है मैं लूंगा। दूसरा कहने लगा हाँ उनके जो चांदी के नूपुर है वो मैं लूंगा। तीसरा कहने लगा मोतियों का हार जो उनके ऊपर है वो मैं लूंगा। इस तरह से ये सारे कल्पना के, स्वप्न के महल में रहने लगे। और ऐसे बैठते बैठते भगवान की शक्ति, उनकी दासी निद्रा देवी ने उनके ऊपर चमत्कार किया। जैसे वो बैठ रहे थे निद्रा देवी आगे छा गई उनके ऊपर, धीरे धीरे से सारे डाकू गहरी नींद सोने लगे और उनको पता ही नहीं चला सारी रात बीत गई। प्रातःकाल हो गया, सारे पक्षी आवाज करने लगे, चू 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 आवाज सुनकर सब उठे, अरे सुबह हो गई। तो एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक दूसरे को डांटने लगे, अरे तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, देखो तुम पहले सो गए इसलिए हम सब सो गए। और एक व्यक्ति दूसरों को दोष देने लगा, अरे जैसे कि तुम रात भर जगे थे देखने के लिए कि कौन सोया हुआ था, कौन जगा हुआ था। तीसरा कहने लगा चले बहस छोड़ो, अभी क्या फायदा ये करके। तो फिर वो ब्राह्मण कहने लगा चलो चलो झगड़ा मत करो, ये भी चंडी की कृपा है, वो चाहती है कि हमें अच्छी तैयारी करके हम चले जाएं, तो कल रात को आज रात को फिर से आएंगे, इस बार तैयारी करके आना। तो उस रात को फिर से सारे डाकू हाजिर हो गए वहां पर, और जैसे हिरण्य पंडित के घर के पास आए जहां के नित्यानंद प्रभु अंदर आराम से सो रहे थे, वहां पर अचानक उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि बड़े विशाल विराट पहाड़ के जैसे शरीर वाले सैनिक हिरण्य पंडित के घर में के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तलवार हाथ में लिए हुए, किसी के हाथ में गदा है, और वो हरी 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 ऐसे कह रहे हैं, हरी का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दूर से अंधकार में ज्यादा तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन इतना तो मालूम पड़ा कि बड़े चट्टान बड़े पहाड़ की तरह शक्तिशाली लगते हैं, दूर ही रहना अच्छा है, और अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत है उनके साथ। तो उनके बीच में बातचीत होने लगा कि अरे ये लोग हैं कौन, कहां से आए ये लोग। तो एक डाकू थोड़ा घबरा गया, उसने कहा कि हाँ सब जो ये लोग हैं गांव के लोग इस नित्यानंद को गोसाई गोसाई कहते हैं, शायद ये कोई बड़ा साधु होगा, कोई सन्यासी भगवान होगा, कुछ क्या होगा। तो दूसरा डाकू कहने लगा अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो देखो कपड़े कैसे पहनता है, हमारे जैसे खाता है पीता है उठता है चलता है, ये थोड़ी भगवान हो सकता है। फिर किसी ने कहा शायद नित्यानंद गोसाई को पता चला होगा कि हम डाका डालने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये सब सैनिकों को पहरा देने के लिए रखा है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं शायद कोई अमीर आदमी आया होगा और उसके ये बॉडीगार्ड्स होंगे शायद, इसलिए आया। खैर जो भी है क्या फायदा है, लगता है कि चंडी देवी की इच्छा है कि आज नहीं और कभी आकर हम आक्रमण करेंगे, 10 दिन बाद हम मिलते हैं। 10 दिन बाद फिर से ये सारे डाकू वहां पर आ बैठे, और उस समय दैव से अमावास्या की रात थी, बिल्कुल अंधकार, और जैसे वो हिरण्य पंडित के घर के पास आए अचानक सारे डाकुओं को अनुभव हुआ एक ही समय कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अंधे हो गए उसी एक क्षण में। और इतने जल्दी एक क्षण में अंधे हो गए तो सबको इतना झटका बैठा कि वो सोच भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है, हम कैसे अंधे हो गए अचानक। और फिर कोई एक आदमी गड्ढे में गिर पड़ा और उस गड्ढे में बहुत सारे कांटे थे, कांटे से सब जगह उनको खून खून बहने लगा, उसके ऊपर मच्छर काटने लगे, नाना प्रकार के कीड़े थे वो भी काटने लगे। कोई दूसरा व्यक्ति था वो ऐसे कई गड्ढे में गिर गया जहां पे गंदगी थी। एक तीसरे व्यक्ति के ऊपर नाना प्रकार के सारे पशु वगैरह वो आक्रमण करने लगे, और उस समय इंद्रदेव ने भी लीला में भाग लेना चाहा कि मेरे प्रभु के प्रति ये लोग अत्याचार करना चाहते हैं, कुछ गलत काम करना चाहते हैं। तो भीषण वर्षा भेजना आरंभ किया, और इतना ही नहीं बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे इनके सर पे छाती पे हाथ पे, और ठंडी हवा तूफान बादल, और बेचारे इनकी इतनी बुरी हालत हो गई और ये प्राय बेहोश हो पड़े, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं, और इतनी बुरी हालत हो गई उनको ठंडी के मारे कांपते कांपते, और कीड़े काट रहे हैं मच्छर काट रहे हैं, वहां कांटे चुभ रहे हैं, खून बह रहा है, ठंडी लग रही है, बहुत बुरी हालत हो गई। कई घंटे इस तरह बीत गए रात में। अंततः उस ब्राह्मण के मन में एक विचार आया, अरे ये तो भगवान ही होंगे, ये नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमने बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती हमने की है। और फिर उन्होंने अपने मन ही मन में बहुत पश्चाताप किया, और इतना पश्चाताप किया कि मन में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया और उनसे क्षमा याचना की कि बहुत गलती हुई हमारे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हम इतने बड़े मूर्ख थे, आपको हम पहचान नहीं पाए। और जैसे ही मन में उस व्यक्ति ने और सारे अन्य डाकुओं ने भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया, उस समय तुरंत उनकी दृष्टि वापस आ गई और वो जागे, तुरंत वो गंगा जी में गए, स्नान किया, और ये डाकुओं का जो नेता था दौड़ के दौड़ते दौड़ते नित्यानंद प्रभु के जगह आया जहां भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। हाथ ऊपर करके, बचाओ बचाओ, मुझे बचाइए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया आपके प्रति। सीधा दंडवत प्रणाम किया उसने नित्यानंद प्रभु के चरणों में, और वहां कीर्तन चल रहा था। कीर्तन सुन के ये डाकू प्रेमावेश में आकर वहीं पर पड़े रहे, कांपते रहे, कृष्ण का नाम का उच्चारण करते रहे। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो डाकू कहने लगा, मैं अभी आपके आश्रय में आया हूं, कृपया मुझे बचाइए। थोड़े भक्त सोचने लगे, शायद ये कोई चाल खेल रहा है, ये कोई ढोंग कर रहा है ताकि कुछ चोरी करे यहां से। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जान लिया, पहचान लिया कि ये कोई ढोंग नहीं कर रहा है। उसने कहा कि क्या बात है, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? फिर डाकू कहने लगा कि हे प्रभु, मैं इस सारे प्रांत का सबसे बड़ा डाकू हूं। मेरा जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन मैं बना सबसे बड़ा नीच व्यक्ति। मैंने बहुत सारे खून किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो कि मैंने नहीं किया है, परंतु आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर हुई है। जब पहले दिन हम सब सो गए थे, मैं पहचान नहीं पाया कि ये आपकी कृपा है, आपकी शक्ति है। दूसरे दिन जब मैंने उन सैनिकों को देखा, फिर भी मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन कल रात के अनुभव के बाद मुझे पता चला है कि आप स्वयं भगवान हैं। नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हुए उसकी दीन भावना देखकर, कहने लगे कि शायद, शायद नहीं, अवश्य तुम पिछले जन्म में कोई महान कृष्ण भक्त हुए होगे, इसलिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर इतनी अनुकंपा की है और इतनी जल्दी से तुम्हें श्रद्धा उत्पन्न हो गई है हृदय में। फिर नित्यानंद प्रभु ने उस डाकू को आलिंगन किया और फिर उस व्यक्ति को शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और लेकिन चेतावनी दी उस व्यक्ति को कि देखो, आज से कभी भी पाप नहीं करना। जो कार्य तुम आज तक करते आए थे, वो आज भी, आज से आगे नहीं करना, आइंदा नहीं करना। और जितने भी सारे डाकू चोर वगैरह हैं, उन सबको कृष्ण भक्त बनाना। और सारे प्रांत में जब लोगों ने सुना कि ये डाकुओं का राजा कृष्ण भक्त बन गया है, तो सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि देखो निताई गोसाई की शक्ति, देखो कि ऐसे लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम में पागल बना दिया है। तो ये है नित्यानंद प्रभु की शक्ति। नित्यानंद प्रभु बड़े बड़े विद्वानों के भी भक्त बनाते थे, और ऐसे चांडाल और डाकू लोगों को भी कृष्ण भक्त बनाया करते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सबसे करुणामय अवतार के रूप में संबोधित किया जाता है। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इसमें अपराध का विचार आता है। 10 तरह के नाम अपराध होते हैं। हमारे मंदिर में हम लोग हर सुबह को इन 10 नाम अपराधों का उच्चारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है, हालांकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप रोज करता हो, लेकिन उसे कृष्ण प्रेम आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत लंबा समय जाप करने के बाद भी शायद उसे कृष्ण प्रेम न मिले। लेकिन अगर उसने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के नामों का उच्चारण किया, इसमें कोई अपराध का विचार नहीं है। और फिर ऐसे शून्य अपराध की अवस्था में अगर वो कृष्ण नाम लेगा, तो फिर बहुत ही जल्द उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि जगन्नाथपुरी में ऐसे कई अपसंप्रदाय हैं जो किसी प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं है, वो अपना ही मनगढ़ंत ढंग से कोई मंत्र बनाते हैं, जैसे भज निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। ये किसी भी शास्त्र में नहीं है मंत्र, लेकिन उन्होंने खुद बना लिया है इस मंत्र को। तो प्रभुपाद कहते थे, लेकिन कम से कम वो निताई गौर का नाम ले रहे हैं, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, तो अवश्य उनको फायदा होगा। आजकल जब लोग पहले भक्ति में आते हैं, तो वह पूछते हैं कि क्या हम राधा कृष्ण की मूर्ति घर में रख के उनकी सेवा कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौर निताय की मूर्ति रखना ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि गौर निताय अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम राधा कृष्ण की, सीता राम की इत्यादि सेवा करते हैं तो इसमें अपराध के कई विचार आते हैं, बहुत सावधानी से हमें करना पड़ता है, और शायद घर में उस स्टैंडर्ड से भगवान की उपासना करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन गौर निताय के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर कोई भूल चूक हो भी जाए, कोई सेवा में अपराध हो भी जाए, तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आसानी से क्षमा कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि घर घर में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति होनी चाहिए, गौर निताय हर घर में विराजमान होने चाहिए। इस तरह से हर एक घर कृष्ण प्रेमियों से भर जाएगा। यही इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का उद्देश्य है। और आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। नित्यानंद प्रभु क्योंकि वह स्वयं बलराम जी हैं और बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए जो भी महान आचार्य नित्यानंद प्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी महान जगत गुरु कहलाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने आज देश देश में, शहर शहर में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन फैलाया है। इसलिए कृष्ण प्रेम आजकल अलग अलग देशों के लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, जापान, यहां तक कि अरब देशों में, साम्यवादी देशों में भी आजकल कृष्ण भक्त हैं। ये है ये हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन की शक्ति, और ये बढ़ते रहेगा, और ये आंदोलन आगे चल के दुनिया का प्रमुख धर्म बनेगा। आज नहीं तो कल, केवल समय की बात है। तो आइए अभी एक और सुंदर भजन गाते हैं, 51 पेज नंबर 51, जिसपे हम 41 क्षमा कीजिए, जिसमें हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु किस तरह से जगह जगह जाकर उनके नाम संकीर्तन का आंदोलन फैलाया करते थे। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु राज्ञा है भाई मागी ए भिक्षा, प्रभु राज्ञा है भाई मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, कृष्ण रसंसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण रसंसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, नदी अगद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु राजाय भाई मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, अश्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, हे श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, कृष्ण रसंसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, हे श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। क्या आपके कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है? हमारे जो लोग होते हैं उनको कैसे हम कृष्ण भक्ति के मार्ग में ला सकते हैं, यह प्रश्न है। ज्यादातर लोग संसार में तो आजकल रजोगुण और तमोगुण में ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे दिखने में आते हैं जो सत्वगुण में स्थित होते हैं। इसलिए नाम संकीर्तन का मार्ग, जो सत्वगुणी लोग होते थे पहले के जमाने में सतयुग में, वो शांति से एक जगह बैठकर ध्यान कर सकते थे। लेकिन आजकल एक जगह शांति से कौन बैठ सकता है? इसलिए भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने यह नाम संकीर्तन का मार्ग दिया है और साथ साथ नृत्य भी, क्योंकि वो जानते हैं कि बैठकर भजन करने वाले भी सो सकते हैं। तो ध्यान का समय चला गया, वो कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने सिखलाया कीर्तन, नृत्य करते हुए कीर्तन। जैसे यहाँ पर्दा है, लेकिन जब पर्दा खुलेगा आप ऊपर देखेंगे, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की तस्वीर है, किस तरह से कीर्तन नृत्य करते हुए वो संकीर्तन करते थे। कम से कम नृत्य करते हुए कोई आदमी सोएगा नहीं, और उसके अंदर जो रजगुण है वो भी अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो खैर, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही सारे दुर्गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान के भक्ति में स्थित हो सकते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी माता सागर में गिरी थी और वराहदेव ने उनको वहां से उठाया अपने दंष्ट्रों पर, दांतों पर, तो कौन सा सागर था? इसके बारे में विस्तार में चर्चा हुई थी कल। ये गर्भोधक सागर है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि हर एक ब्रह्मांड का आकार एक अंडे का आकार है, ब्रह्म अंडा, और इस अंडे के अंदर आधा हिस्सा जो है वो इस जल से भरा हुआ है, जो कि जिसको कि गर्भोधक सागर कहते हैं। इसके ऊपर अनंत शेष विराजे हैं, अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे हैं गर्भोदक्षायी विष्णु। उनके नाभि से एक कमल पुष्प आता है, उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी विराजे हैं, और उस कमल की डंडी के अंदर जितने भी सारे ग्रह और लोक इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, 14 भुवन, वो उसमें स्थित हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि असुरों के उग्र कर्म से या ब्रह्मा जी के रात्रि में पृथ्वी अपनी कक्षा से हटकर नीचे गर्भोदक सागर में गिर जाती है, तो उस समय भगवान को अवतार लेना पड़ता है पृथ्वी माता को ऊपर उठाने के लिए। तो ये सागर बहुत विराट है, बहुत बड़ा, और इस सागर में पृथ्वी गिर पड़ी थी। और कोई प्रश्न? हाँ जी, ये है कि प्रवचन में बताया जाता था कि जो लोग भक्तों को छेड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं उनका, उनको बहुत दुख होता है। तो ऐसे भी देखा जाता है कि कई लोग पहले मजाक उड़ाते हैं भक्तों का, फिर आखिर में अंततः वही भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे कैसे? ऐसे हो सकता है, हमारी संस्था में भी कई उदाहरण ऐसे हैं जो पहले केवल मजाक उड़ाया करते थे। एक भक्त हमारी संस्था में है विदेश में, जो पहले उनको इतना गुस्सा होता था जब वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्तों को देखते थे सड़क पे नगर संकीर्तन करते हुए, कि उनके सहन शक्ति के बाहर हो जाता। और एक दिन उनको पीटने के लिए गए, मुक्का प्रहार करने उनके ऊपर गए कि तुम लोग क्यों इधर आते हो। लेकिन बाद में भक्तों का संग आ गया और खुद भक्त बने, और आज भी वो भक्त है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है। भगवान अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को उनके चरण कमलों में लाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान जो कि बलि महाराज को उपदेश दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भक्तों में दोष देखता है, भूल देखता है, और इस वजह से उनका मजाक उड़ाता है, उनकी तिरस्कार करता है, तो उनको बहुत दुख भुगतना पड़ेगा, जैसे कि मरीचि ऋषि के पुत्रों को हुआ। तो आखिर में वो भक्ति में आ सकते हैं, भगवान की कृपा उन पे होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान अपनी दृष्टि से उनको शुद्धिकरण कराएं, थोड़ा बहुत कष्ट उनको हो जाए। लेकिन अगर उनका मजाक ज्यादा गंभीर नहीं है, अगर छोटी सी बात है, तो महाप्रभु, अगर भक्त उसके ऊपर कृपा करता है, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं करेंगे कुछ। जब जगाई और मधाई नाम के जो भयानक असुर थे, मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर एक शराब के मटके से आक्रमण किया, नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लगा, तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेकर मधाई का वध करने वाले थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, आप यहां इस कलयुग में लोगों के शरीर की हत्या करने के लिए नहीं आए, क्योंकि अगर आप ऐसे पापी लोगों को देखेंगे तो आपको कलयुग में सभी लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। आपका अवतार लेने का कारण है कि लोगों के हृदय में जो राक्षस बैठे हैं उनका वध करना, न कि उस शरीर का वध करना। आपका उद्देश्य है कि ऐसे जगाए मधाए को उद्धार करना, इनको कृष्ण भक्त बनाना, तो कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस निवेदन को नकार नहीं पाए, इनकार नहीं कर पाए। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्त का मजाक उड़ाता है, लेकिन भक्त उसके ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, भक्त फिर भी उसके पीछे जाके उसको भक्त बनाता है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के हाथ बंधे हुए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भक्त ही क्षमा कर रहा है उसको, मैं क्या करूं। मेरा भक्त जो होता है वो मुझसे ज्यादा कृपालु होता है। तो भगवान भी अपने भक्त के सामने हार मानते हैं कि मेरे से ज्यादा कृपालु मेरे भक्त होते हैं। ठीक है, और प्रश्न आपका यह है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं, तो क्या आवश्यकता थी उनकी? पहली बात तो यह है कि नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत जो आदमी जो होता है वो किसी की परवाह नहीं करता, सामाजिक नियमों की, विधि विधानों की परवाह नहीं करता, वो अपने ही अंदर की दुनिया में मस्त रहता है। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु अपने कृष्ण भक्ति की भावना में हमेशा मस्त रहते थे, और अवधूत ऐसे ही करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े पक्के थे, जब उन्होंने संन्यास लिया इतने कट्टरता से उन्होंने सन्यास के नियमों का पालन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अवधूत थे, उनके लिए कोई नियम नहीं। इसलिए अंततः चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप विवाह करो, क्योंकि समाज में लोग कुछ समझेंगे नहीं और आपके प्रति अपराध करेंगे। प्रचार के लिए आप विवाहित हो जाओ, और प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। देखिए, दोनों प्रचार के लिए, कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है प्रचार के लिए, तो कोई व्यक्ति संन्यास लेता है प्रचार के लिए। और एक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। भगवान हालांकि आसानी से देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो ईर्ष्या से मुक्त है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु दृष्टि से उनकी ओर देखेगा तो उनके प्रति अपराध करेगा और फिर कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए समझ लीजिए कि ये एक स्क्रीनिंग है, फिल्टरिंग। केवल जो योग्य हैं, जो ईर्ष्या से मुक्त हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये कृष्ण प्रेम मिल सकता है। हाँ जी माता, कि नित्यानंद प्रभु को प्रथम गुरु बताया गया है, ऐसे क्यों? क्योंकि वह स्वयं बलराम हैं। बलराम आदि गुरु कहलाते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु भी आदि गुरु हैं। बलराम सारे आध्यात्मिक बल के उद्गम हैं, और जितने भी गुरु होते हैं, जो भी गुरु की सेवा करता है उसे शक्ति बलराम देते हैं, वो बलराम के प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भी आदि गुरु कहा गया है। कब इस जगत को त्याग कर वापस भगवत धाम चले गए? कई साल रहे, लेकिन आज उनके आविर्भाव का दिवस है तो उनके तिरुभाव के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। थोड़ा रसाभास हो जाता है, भाव अलग हो जाता है। लेकिन खैर, चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के पश्चात भी वो यहां पर रहे, कई सालों तक रहे, और फिर वो भी भगवान के धाम में वापस चले गए। उनके माता और पिता कौन थे? उनके माता का नाम था पद्मावती, उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित, जो एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे एक चक्र गांव के। ये एक चक्र गांव आपने कहीं सुना है? इसका नाम को किस लीला के संदर्भ में आपने सुना है? महाभारत में कौन सी लीला? एक चक्र, जब भीमसेन अन्य कुंती और पांडव एक चक्र में थे तो वहां पर कौन था? बकासुर नाम का भयानक राक्षस रहता था, और वहां पे उसने एक समझौता कर लिया गांव के निवासियों से कि आप हर रोज एक गाड़ी भर के मुझे भोजन दे दो, और आपके गांव का एक आदमी जो कि उस गाड़ी को लेकर आएगा मैं उसे भी खाऊंगा, और गाड़ी में जो भोजन है उसे भी खाऊंगा। और जिस घर में भीमसेन और पांडव रहा करते थे, एक दिन उनकी बारी आ गई कि उनका जो जवान लड़का था उसे जाना था। तो भीमसेन ने कहा चिंता नहीं करो। तो गाड़ी में भर भर के प्रसाद भोजन था, भीमसेन को अच्छा लगा, अच्छा मौका मिला। तो चलते चलते गाड़ी चलाते चलाते भीमसेन ने सारा प्रसाद खा लिया, खाते 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 खाते। और उधर वो बकासुर देख रहे थे, बहुत देर हो रही है, नहीं आई गाड़ी, आज क्या बात है? बड़े गुस्से होकर इंतजार कर रहे थे, देखा कि आ रही है गाड़ी लेकिन कोई आदमी बैठा है, मेरा भोजन खा रहा है और धीरे से आ रहा है, आराम से आ रहा है। तो बड़ा क्रोध आया, आक्रमण करने लगे, भीमसेन के ऊपर आक्रमण किया। तो भीमसेन ने कहा अरे ठहरो, खा रहा हूं भाई, थोड़ा रुको तो सही। लेकिन बकासुर कोई रुकने के मूड में नहीं थे, आक्रमण करते रहे। तो भीमसेन ने क्या किया, एक हाथ से युद्ध करना शुरू किया, एक दूसरे हाथ से आराम से खा रहे थे। और जब आराम से खा लिया, कुछ नहीं रहा गाड़ी में, तो फिर कहा चलो भाई अभी युद्ध करते हैं। फिर बकासुर के साथ युद्ध किया और बहुत ही जल्दी उसका वध कर दिया। तो ये भी एक चक्र गांव में हुआ है, ये भी बंगाल में है। तो उसी गांव में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के पहले।